कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा। थाई गौर प्रेमानंदे श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी भगवान की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। निथाई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब लोग बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये।
हरे कृष्णा। तो आप सबका इस पावन पर्व पर, जन्माष्टमी के महामहोत्सव पर सबका स्वागत है। रात को होने वाली वर्षा सुबह से आरंभ हो गई है। हरे कृष्णा। सो कृष्ण भक्तों के लिए ये सर्वोच्च उत्सव है और जन सामान्य पर परम कृपा करने के लिए भगवान ने अवतार लिया। वैसे भगवान को अवतार लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान अपने धाम में आनंद में रहते हैं। यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं जो भगवान को वहाँ से अच्छी मिले। वहाँ के सब भक्त भी परम भक्त हैं, परम प्रेमी भक्त हैं भगवान के। और यहाँ की जितनी संख्या है भक्तों की, उससे करोड़ों गुना अधिक लोग वहाँ पर रहते हैं और शुद्ध भाव में भगवान की सेवा करते हैं। सो अनुग्रहाय भूतानाम, श्रीमद् भागवत में लिखा है कि जो जीव उनको छोड़कर यहाँ पर कुछ भोग लेने का प्रयास कर रहे हैं, उनके प्रति अनुग्रह कृपा करुणा के कारण भगवान यहाँ पर अवतार लेते हैं, ताकि उन सब लोगों को, हम सब लोगों को वास्तविक आनंद का अनुभव हो और भगवान के लीलाओं में जो परम आनंद छुपा हुआ है वो सबको प्राप्त हो। इसलिए बड़ी ही करुणा से भगवान आए यहाँ पर। इसलिए भगवान का जितना धन्यवाद देना उतना कम है, क्योंकि जैसे कोई एक बच्चा होता है, वो झगड़ा करता है पिताजी से और घर छोड़ के चला जाता है और किसी रेलवे के प्लेटफॉर्म पे बूट पॉलिश करके जीवन चलाता है, तो पिताजी अपना महल छोड़कर वो बूट पॉलिश वाले जगह पे जाते हैं, उसको बोलते बेटा चलो घर पे, यहाँ पर क्यों तड़प रहे हो, नहीं मुझे आना है आपके घर पे। फिर भी पिताजी चाचा को भेजते हैं, दोस्त को भेजते हैं, खुद आते हैं, तो पिताजी को आने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रेम ऐसी, प्रेम ऐसा बंधन है, प्रेम ऐसी, ऐसा फोर्स है जो व्यक्ति को ऐसे कार्य करने के लिए मजबूर करता है जो वो नहीं कर सकता है अन्य समय पर। तो ये भगवान का असीम प्रेम है हमारे ऊपर, वो हमारा, हमारे लिए परम आनंद चाहते हैं वो, ताकि हम लोग उसको अनुभव करें। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने बड़ी दया करके यहाँ पर अवतार लिया है और हम लोगों को, हमको ये दिन बहुत ही धूमधाम से मनाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा, हमारे मेडिसिन में एक होता है एमनेजिया। एमनेजिया का मतलब होता है कि व्यक्ति कुछ एक अपघात होता है जीवन में और भूल जाता है कि उसके पहले क्या हुआ था, उसका मेमोरी रहता है वह हार्ड डिस्क में, लेकिन वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो क्या करते हैं उसके लिए, उसके लिए उन जगहों पर उसको लेके जाते हैं जहाँ पर वो पहले हुआ करता था और कुछ अच्छी अच्छी घटनाएं वहाँ पर हो गई है, तो वहाँ पर लेके जाके उसकी याद उसको वापस दिलाई जाती है, तो फिर वो कनेक्शन वापस बन जाता है और पूरा धीरे धीरे उसको याद आने लगता है। तो भगवान का ये उत्सव जो है, ये हमारा एक प्रकार से एमनेजिया ट्रीटमेंट है। ये सब हम भूल चुके हैं ना कि भगवान के धाम में क्या होता है, हाँ वहाँ पर हर कदम एक नृत्य होता है, कोई चलता नहीं वहाँ पर। आप बच्चों को देखा है कभी? बच्चे कभी चलते नहीं हैं, डांस करते ही जाते हैं आगे। ऐसे हम लोग भी गोलोक वृंदावन में नृत्य में ही रहते हैं, कोई चलता नहीं है वहाँ पर, कोई बोलता नहीं है वहाँ पर, सब लोग केवल गीत गाते हैं, पद्य में ही बोलते हैं, फुल्ली राइम्ड कन्वर्सेशन। कितना मधुर होगा, किसी का आवाज़ वहाँ कर्कश नहीं होता है, सबका आवाज़ मधुर होता है, कोई कुरूप नहीं होता, सब सुंदर होते हैं। हर कण वहाँ का चिंतामणि है, विश फुलफिलिंग जेम, और हर वृक्ष वहाँ कल्प वृक्ष है। किसी भी वृक्ष के सामने खड़े रहो, आ करो और सोचो रसगुल्ला, तो आपके मुंह में रसगुल्ला आ जाएगा। मतलब क्या होता है उसका, कि विश फुलफिलिंग डिजायर अ ट्री। सो और वहाँ की हर गाय जो है कामधेनु है, और ये जो वातावरण है ये देवताओं को भी लाभ नहीं होता है उसका, देवताओं को प्राप्त नहीं है। ब्रह्मा जी भी जब आए ना वृंदावन में आए, लेकिन फिर भी इन वस्तुओं का अनुभव नहीं कर सके, वो बछड़े चुरा के आए थे ना, तो इन वस्तुओं का अनुभव नहीं कर सके वो। जब कृष्ण के शरणागत हुए, उनके चरणों में गिर गए, गिड़गिड़ाए पश्चाताप के भाव से, तब जाकर वृंदावन में होते हुए उनको फिर बाद में गाय कामधेनु नजर आई, वृक्ष कल्प वृक्ष नजर आए, हर कर्ण चिंतामणि नजर आया, और पूरा जो गौरव है गौलोक वृंदावन का वो वहाँ पर उनके सामने प्रकट हो गया। इसका अर्थ क्या है, सब वस्तुएं वहीं होती है लेकिन हमको दिखाई नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि हमारा मन कहीं, हमारा एंटीना कहीं और लगा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। यहाँ पर भी गौलोक वृंदावन प्रकट है, गोवर्धन इको विलेज में। कमी किस बात की है? कमी भाव की कमी है। यहाँ पर भी हर कर्ण चिंतामणि है, यहाँ पर भी हर पेड़ कल्प वृक्ष है, यहाँ पर भी गोवर्धन साक्षात प्रकट है। लेकिन यहाँ की विशेष बात यह है कि भाव निर्माण करने के लिए ये सुंदर जगह है। हमको अपने आत्मा को ट्रेनिंग देनी है। जैसे ब्रह्मा जी ने पहले एक टेस्ट करने के भाव से वो आए थे, है ना, कि अब मैं टेस्ट करूंगा इस भगवान, कौन है ये लड़का, मैंने सुना है इसने अगासुर को वध किया है और सब लोग कहते हैं कि ये भगवान है, देखता हूँ कौन है वो, और बछड़े चुराए बोलते परीक्षा लेता हूँ उसकी, भगवान की परीक्षा लिया उन्होंने। हाँ, फिर जब देखा भगवान ने तो ऐसा चमत्कार दिखाया उनको कि सारा जो उनका जो चार दिमाग है ना उनके, उनके अंदर ऐसी शक्ति भगवान ने फिट कर दिया है कि पूरा ब्रह्मांड को निर्माण करने का पूरा सॉफ्टवेयर उसमें फिट किया है। इतनी बुद्धि तो पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है, विचार है उनके पास ऐसे चार दिशाओं के लिए। वो चारों दिशाओं का जो उनका सर्वश्रेष्ठ बुद्धि का वहाँ पर जो निवेश था, इन्वेस्टमेंट, वो सब फेल हो गया, कम्प्लीटली पैरालाइज हो गए वो, जब उन्होंने जो कुछ देखा वहाँ पर। हाँ, देखो हमारे भगवान कैसे हैं, सारे ग्वाल बालों के रूप में विभाजित हो गए, सारे ग्वाल बाल खुद बन गए, जो ब्रह्मा के सोच के बाहर है कि ऐसा ये बालक कर सकता है, भगवान होने पर भी कर सकता है कि नहीं वो भी मालूम नहीं था उनको। वो सारे ग्वाल बालों में रूपांतरित हो गए, सारे बछड़ों में रूपांतरित हो गए, वैसे के वैसे, वैसे ही घर गए, एक महीने एक साल भर वैसे ही रहे, फिर वो सारे ग्वाल बाल जितने भी थे, जारे बछड़े थे, वो सारे विष्णु हो गए उनके आंखों के सामने। ये सारे कल्पना के बाहर है उनके, भगवान क्या नहीं कर सकते हैं, हमारी सोच के बाहर जो भी है वो सब कुछ कर सकते हैं। और उसके आगे आश्चर्य हुआ कि जो विष्णु बने थे उनके साथ में, उनके एक एक विष्णु के साथ में 33 कोटि देवताओं का एक सेट निर्माण हो गया, एक एक विष्णु के साथ, जैसे करोड़ों 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 अरबों विष्णु थे वहाँ पर, और सबके साथ एक 33 करोड़ देवताओं का एक सेट था जो उनका पूजन कर रहा था, गीत गायन सब कुछ कर रहा था। और उसके बाद और एक आश्चर्य हुआ, वो सब अचानक गायब हो गए और एक ही कृष्ण बच गए, ऐसे हाथ में मक्खन और वो लेके ढूंढ रहे हैं चावल लेकर, कहाँ मेरे बछड़े, कहाँ मेरे ग्वाल बाल। ये देखकर ब्रह्मा जी पूरे बिविल्डर हो गए, पूरे भ्रमित हो गए, चरणों में गिर गए। तब जाकर उनको साक्षात्कार हुआ। तो हमें भी ये कृष्ण यहाँ पर अभी सोकॉल्ड तथाकथित मार्बल की मूर्ति में दिखाई पड़ रहे हैं, है ना। हिलते तो है नहीं, जब भी जाओ ऐसे ही खड़े रहते, राधारानी भी ऐसे ही खड़े रहते। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी गए थे तो जगन्नाथ भगवान को तो हाथ और पैर भी नहीं थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को हर समय वो मुरली बजाते हुए दिखाई पड़े, लाइव दर्शन। क्या क्या भेद का है इसके अंदर? भेद केवल भाव का है। सदैव चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथ जी मुरली बजाते हुए दिखाई पड़े, यहां तक कि जगन्नाथ के मंदिर में गए भी नहीं, वो दूर से कलश को देख रहे हैं, वहां पर भी ऊपर नीला बालक दिखाई पड़ा, उनको बुला रहे आ जाओ आ जाओ, भाग रहे हैं वो पागलों की तरह। फिर वो स्वयं कहते हैं कि वो बुढ़िया को आपने क्यों डांटा जो मेरे ऊपर कंधे पर चढ़कर दर्शन कर रही, मुझमें वो भाव नहीं है जो बुढ़िया में है। वो इतने जगन्नाथ को देखने के लिए व्याकुल है कि वो देख नहीं रहे किसके ऊपर चढ़ रही है, आप उसको क्यों डांट रहे हो? क्योंकि भक्तों ने डांटा ना, कह रही चैतन्य महाप्रभु दर्शन कर रहे हैं, उनके कंधे पर पैर रखे कोई बुढ़िया करके खड़ी होकर दर्शन कर रही है। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको वंदन करता हूं, उसकी कृपा चाहता हूं कि मुझमें भी ये भाव आ जाए, जगन्नाथ को देखने का आतुरता उत्सुकता निर्माण हो जाए। तो भगवान सब जगह व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, विग्रह में भी विराजमान है, सब जगह विराजमान है। जिसके हृदय में जैसा भाव होगा वैसा दर्शन प्राप्त होता है। आपको लगेगा ये सब झूठ है, इतना इतना बेकार का डेकोरेशन करके रखा है, इतना खर्चा पैसा समय सब बर्बाद कर रहे हैं, क्या है? कुछ है नहीं, भगवान ही नहीं है तो ये सब जन्मोत्सव का मतलब क्या है? तो उनके लिए पत्थर है वो। और जो लोग समझते हैं कि वो हैं, उनके लिए साक्षात है वो। तो अगर साल भर हम लोग ऐसा अनुभव नहीं करते शायद, तो कम से कम आज तो ऐसा अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए कि साक्षात है भगवान यहाँ पर लीला कर रहे हैं, यहाँ के वनों वनों में भगवान डोल रहे हैं, लीला कर रहे हैं। उस भाव को निर्माण करने के लिए दिन है ये। महोत्सव क्यों मनाते हैं, इतना सब डेकोरेशन क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा भाव निर्माण हो कि किसके लिए कर रहे हैं, वो श्री कृष्ण भगवान परम पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम गौलोकेश्वर परात्पर भगवान के लिए कर रहे हैं। तो ये दिन फिर भगवान का सफल है। अगर भगवान ने इस दिन में जन्म लिया है तो हम सब लोगों को देखना है कि हम कुछ खो गए हैं, उसको प्राप्त करने का या प्राप्त करने की शुरुआत करने का तो कम से कम ये दिन है। जो भक्ति मार्ग में बहुत दिनों से है उनके लिए पुनर्जागृत करने के लिए है, हाँ एनर्जाइज करने के लिए है, पुनः अपनी भक्ति में जोश लाने के लिए है। कितने दयालु हैं वो भगवान, अपने सारे एंटराज को लेके, सारे पार्षदों को लेके, पूरी टीम को लेकर आते हैं और ब्रज की लीला करते हैं, पांच रसों में मथुरा लीला करते हैं, ऐश्वर्य में द्वारका लीला करते हैं, राजा बनकर हस्तिनापुर में राजनीति का उपयोग करके बहुत सुंदर काम करते हैं, विश्व को राक्षसों से मुक्त करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम क्या करते हैं? प्रेम की लीलाओं को प्रकट करते हैं, जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। बाकी तो जो योगी है, जो ध्यानी है, जो ज्ञानी है, वो तपस्वी है, उन सबको तो साक्षात्कार अलग प्रकार का होता है। ऑ एंड रेवरेंस, ऐश्वर्य संपन्न भगवान का वैभव दिखाई पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी भगवान की जो भेंट है हमारे लिए वो उनका ऐश्वर्य नहीं है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना ग्रैंडियोर, इट इज नॉट हिज ग्रैंडियोर दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। उनका जो प्रेम है, जो प्रेम पूर्ण आदान प्रदान है भक्तों के साथ, कैसा आदान प्रदान करते हैं वो? ऐसा नहीं कि जो राजा है नंद महाराज है या अग्रसेन महाराज है उनके साथ ही वो प्रेम का आदान प्रदान, अपने लेवल के लोगों के साथ करते हैं, ऐसा नहीं है। शबरी के घर में जाके भी जूठे बेर खाते हैं, सुदामा के वो भी गले लगाते हैं, ये फटा हुआ कपड़ा पहना है, धूल से भरा हुआ है, सब लोग अचंभित हो जाते हैं। जब मैया द्वारका के किनारे जाती है पुकारती है तो वो भाग भाग के जब आते हैं तो धीरे 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 बालक बन जाते हैं। वो राजा बनकर सिंहासन में आवाज़ सुनते हैं और जब दौड़ के आने लगते हैं तो धीरे 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 छोटे 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 होकर उतने से नन्हे बालक बनकर माँ के गोद में, द्वारका की लीला है। तो उनके लिए कोई वो नहीं है, सब लोग को अचंभित करने वाली लीला है उनकी। जो जिस सुदामा को सब लोग बोल रहे थे तुम कौन हो, मैं कृष्ण का मित्र हूँ, तो उन्हें सबको उसको ऊपर से नीचे देखा, ये कृष्ण का मित्र है कैसे हो सकता है? लेकिन कृष्ण ने उनको साबित कर दिया कि ये मेरा मित्र है, मेरी मित्रता कपड़ों पर और धन पर और ऐश्वर्य पर निर्भर नहीं है, मेरी मित्रता प्रेम पर निर्भर है। और वो प्रेम जो सुदामा के लिए उपलब्ध था, जो ब्रजवासियों के लिए उपलब्ध था, वो हम सब के लिए भी उपलब्ध है। और उसके लिए हमारे ऊपर कोई टोपी पहनने की जरूरत नहीं है कि मैं धनी हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं प्रसिद्ध हूँ, हाँ आई एम फेमस, और मैं बुद्धिमान हूँ, और मैं इतने साल से भक्ति में हूँ, ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबकी कोई कीमत होती ही नहीं है भगवान के नज़र में। भगवान प्रेम चाहते हैं, और प्रेम जहाँ पर है वहाँ भगवान रहते हैं। वो कह रहे हैं ना नारद मुनि को, ना हम तिष्ठति वैकुंठे, वैकुंठ तो पूरा ऐश्वर्य से भरा हुआ है, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्य मानव, एक लक्ष्मी नहीं अनंत लक्ष्मियाँ वहाँ पर उनकी सेवा करती रहती है। बोलते मैं वहाँ पर नहीं हूँ, क्योंकि ऐश्वर्य उनको पाने का, उनको संबंध करने का कोई लक्षण नहीं है जिसके कारण वो आपसे प्रेम करेंगे। हाँ, और योगी जो अनंत हजारों साल से जन्म जन्मांतर में तप कर रहे हैं, उनके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उधर भी नहीं हूँ मैं। जहाँ मेरे भक्त प्रेम से मुझे पुकारते हैं, चाहे गरीब हो, अमीर हो, सुंदर हो, कुरूप हो, मैं वही रहता हूँ। अभी वो कोई इतनी बड़ी जगह नहीं हो सकती ना, गटर के बाजू में भी आप पुकारेंगे तो वहाँ पर भी मिलेंगे आपको, आएंगे, मतलब वो सोचेंगे नहीं कि रे अरे आप जरा अच्छी जगह जब करो मेरे लिए, थोड़े मेरे लिए बदबू नहीं आएगी तो अच्छा रहेगा। नहीं, उनको लोग उनको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वह केवल प्रेम और केवल प्रेम और केवल प्रेम के ही भूखे हैं। और प्रेम अगर किसके अंदर है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। देखो वो रथ में जब चला रहे थे भगवान सारथी बनकर, कितनी सुंदर बात है, आप रोंगटे खड़े होते बार बार सोचने पर उसके। बीच महाभारत युद्ध में कई बार अर्जुन के घोड़े थक गए हैं, है ना। अभी जयद्रथ को मारने का प्रसंग है, अभी टाइम की कमी है, हर एक क्षण गिनते जा रहा है, सूर्यास्त होने को बहुत कम समय बाकी है, तो घोड़े थक गए। बोलते हैं भगवान, अरे केशव ये समय घोड़े थकने का नहीं है। बोले क्या करूँ, थक गए तो क्या करूँ, रुकना तो पड़ेगा ही। फिर भगवान रुकाते हैं, उसमें एक ऐसा एक कॉर्डन बना देते हैं बाणों का, ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो। फिर घोड़ों को थपथपाते हैं, देखो भगवान है वो, हाँ साक्षात गौलोक के मालिक हैं, सारा सृजन निर्माण करते हैं वो, सृष्टि के निर्माण करता है वो, अपने भक्त के घोड़ों को थपथपा रहे हैं, उनको मालिश कर रहे हैं, उनको पानी पिला रहे हैं, घास पिला रहे हैं, पैरों को दबा रहे हैं, उत्साह दे रहे हैं उनको। उसके आगे लिखा है कि ये सब करने के बाद जब घोड़े एकदम फ्रेश हो गए, तो भगवान ने अर्जुन के घोड़ों के चरणों की जो रज है वो अपने माथे पर लगाई। क्यों? कि ये मेरे भक्त के घोड़े हैं, मेरे भक्त की सेवा करते हैं, इसलिए इसकी इनकी इसकी चरणों के रज जो है वो मेरे लिए सर पर रखने लायक है, वंदनीय है, पूजनीय है। ऐसे प्रेमी भगवान है हमारे, वो कोई अपने पद को नहीं देखते प्रेम के सामने, प्रेम के सामने सब भूल जाते हैं, और प्रेम करने वालों के दास बनते हैं, और दासों के दासों के चरणों के रज लेते हैं। देखो कैसे भगवान है हमारे, ये हमारा भाग्य है कि इनका हम पूजन करते हैं, इनका भजन करते हैं, इनका भक्ति करने का प्रयास करते हैं। और जब आते हैं तो बार बार शास्त्र में लिखा हुआ है कि इनका आना दिव्य है, इनका कर्म भी दिव्य है, और ये भी बताया गया है कि इनके कर्म की और जन्म की दिव्यता अगर समझ में आ गई ना तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना अगर समझ में आया तो बुद्धिमान होने की जरूरत नहीं, योगी होने की जरूरत नहीं, तपस्वी होने की जरूरत नहीं, ध्यानी होने की जरूरत नहीं। इतना अगर समझ में आ गया भक्तों के संग में कि ये जो कर रहे हैं वो सब दिव्य है। कैसे दिव्य है? कोई बालक तो जन्मता चार भुजा वाला, लंबे घुंघराले बाल वाला, चार भुजा में शंख चक्र पद्म गदा अलंकार वैजयंती मणि, हाँ वैदुर्य मणि का मुकुट, ये सब नहीं होता है किसी का, लेकिन भगवान ने दिखाया ये उनकी दिव्यता है। हम सब लोग एक विशिष्ट प्रकार से जन्म लेते हैं और भगवान अपने माँ के सामने प्रकट हो जाते हैं। देखो तो थोड़ा सोचा हमने कि आज कथा तो सबको पता है भगवान की, बच्चा बच्चा भी जानता है भारतवर्ष में भाग्यवान जीव, तो हम लोग सोचे कि क्या क्या उसमें से हम सीख सकते हैं भगवान की कथा में से। एक तो भूमि परेशान हो गई तो सीधे भगवान के पास गई, अकामो सर्व कामो व मोक्ष कामो व उदार दी, कुछ भी हमारे में परेशानी है ना, 10 जगह मत जाओ, एक ही जगह नंबर लगाओ, सारा निवेदन वहीं रखो। आपको क्या तकलीफ है, छोटी तकलीफ है, बड़ी तकलीफ है, एक ही व्यक्ति के चरणों में वो निवेदन रखो और उसी व्यक्ति से जो सर्वोच्च है वो आपका तुरंत समय क्या कहते हैं उसको समस्या का समाधान कर लेंगे। फिर देखो भगवान ने अपने सारे देवताओं को जितने भक्त थे सबको आदेश दिया, यहाँ जन्म लो, वहाँ जन्म लो, द्वारका में लो, वृंदावन में लो, मथुरा में लो, कुरुवंश में लो, सब जगह पर सबको पोजीशन लगा दिया। और जब भगवान आए तो सबको पता है कि वो पहले 6 बालकों का वध हुआ, वो 6 बालक षड रिपु थे, काम क्रोध आदि, जो काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर जो थे वो मारीची के पुत्र थे, मन के पुत्र थे वो, मन जो मारीची स्वयं मन है, ब्रह्मा जी का मन जो है वो मारीची के रूप में प्रकट हुआ। और इनको शाप मिला था कि उनके पिता के हाथ से उनकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए वो हिरण्यकशिपु का पुत्र कालयवन अगले जन्म में कंस बन के आया, उनके हाथ में उनका मृत्यु होना था। उसके बाद में बलदेव जी को भगवान ने बोला कि आप जाओ देवकी के कर्म में कुछ समय के लिए विराजमान रहो। तो बलदेव जी आए और देवकी का हृदय समान जो गर्भाशय है वो 6 विकारों से मुक्त होने के बाद में पवित्र कर दिया, भगवान के आने के लिए योग्य कर दिया। इसलिए बलदेव जी गुरु हैं, आदि गुरु। और फिर उनको योग माया के द्वारा प्रस्थापित किया गया रोहिणी के गर्भ में, ये भी दिव्य है, ये हमारे मेडिकल साइंस में नहीं है। हाँ, यहाँ के गर्भ को उस माता के गर्भ में उसके यहाँ से ट्रांसफर ऐसा नहीं होता है, वो जिएगा ही नहीं बच्चा, समाप्त हो जाएगा उधर ही एक ही समय पे। योग माया के प्रभाव से योग माया को आदेश दिया भगवान ने कि तुमको ये कार्य करना है। फिर योग माया ने उस गर्भ को, बलदेव जी हैं कोई साक्षात जीव, साधारण जीव नहीं है, साक्षात भगवान है वो, सेवक भगवान, उनको देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थलांतरित किया उन्होंने। और 5 दिन के बाद में उनका जन्म हुआ उधर गोकुल में। तो नंद महाराज भी पूछ रहे हैं, अरे काल तो 9 महीने का होता है, 5 दिन में कैसे हो गया? उन्होंने कहा ये अनंत शेष साक्षात भगवान है, संकर्षण भगवान है। और वो सेवा की ना योग माया ने तो उसका, उसको भी भगवान ने भेंट दिया, फल दिया उसका। तुमको क्या देखना है इसके अंदर, बिना सेवा के कोई फल प्राप्त नहीं होता है। सेवा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, या बहुत सराहनीय हो, या क्या कहते हैं उसको, नोटिसिएबल हो, देखने लायक हो, देख सकते हैं उसको आप, परख सकते हैं, जरूरत नहीं है। सेवा जो भाव से की जाती है, शरणागत भाव में की जाती है, प्रेम से की जाती है, उससे भगवान प्रभावित हो जाते हैं। तो उसके लिए भगवान ने क्या वरदान दिया कि तुम मेरी बहन बनोगी, यशोदा के गर्भ में हम दोनों साथ में रहेंगे। कल मैंने शाम को पूरा कथा बताई, वो कैसे यशोदा गर्भवती हुई, उसको सुन सकते हैं आप। तो यशोदा के गर्भ में ओरिजिनल कृष्ण, यशोदा कृष्ण, माधुर्य कृष्ण विराजमान हुए, साथ साथ योग माया विराजमान हुई, तो ट्विन प्रेगनेंसी हुई। और देवकी के गर्भ में जो 8वें गर्भ के रूप में कृष्ण आए वो ऐश्वर्य कृष्ण है, जो राक्षसों का वध करते हैं, जो कृष्ण के अंदर होते हैं। तो ये कृष्ण को वसुदेव जी ले गए। हाँ, अभी देखो इतनी भय में थी देवकी, अभी तो पता नहीं सब लोग सब कुछ कवर कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे। देवकी वसुदेव दोनों भय में हैं कि अरे 8वें पुत्र को कंस मारने को आएगा, कैसे बचाएं इस पुत्र को, तो आया ही ऐसे है ये 4 भुजा में। तो वो बता रहे हैं डोंट वरी। तो इसका भी रहस्य है कि भगवान उनको 2 भुजाओं के बालक के रूप में आना था, तो पहले वो 4 भुजा वाले भगवान के रूप में क्यों आए, क्योंकि उनको पता था कि वसुदेव देवकी को अभी भी भय है कंस से, तो उनको आश्वस्त करने के लिए आए वो, डोंट वरी मैं ही वो भगवान हूँ जिसकी आकाशवाणी हुई थी कि 8वें बालक के रूप में मैं आऊँगा, वही मैं हूँ, और आप ही सुतपाव प्रश्न थे, आपका पहले भी मैं पुत्र बन चुका हूँ, सेकेंड टाइम भी बन चुका हूँ, उपेंद्र के रूप में मैं आपका पुत्र बन चुका हूँ, आप कश्यप और अदिति थे। तो भगवान ने उनका भय दूर करने के लिए ये विशेष रूप लिया था। फिर भी वसुदेव पूरा निर्भय हो गए, और देवकी का वात्सल्य वसुदेव से भी श्रेष्ठ है, इसलिए बहुत सारा भय नष्ट हो गया, लेकिन कुछ कुछ भय रहेगा। फिर भी कह रहे हैं आप एक काम करो, आप बालक के रूप में आ जाओ। तो उन्होंने वसुदेव को पहले आदेश दे दिया कि जब मैं बालक रूप में आऊंगा, माता का स्तनपान करूंगा, मुझे ले जाना आप। फिर वो दो भुजा वाले छोटे से बालक बने, सब शंख चक्र पद्म गदा ऐश्वर्य गायब। माँ ने अपने बालक की तरह आंचल में छुपाकर दूध पिलाया। देखो देवकी का कितना त्याग है। एक तो कितने बालकों का वध देखा उसने। हम लोग देवकी का सोच लीजिए, एक मिनट के लिए हम देवकी हैं, हमारे आंखों के सामने हमारे नवजात शिशुओं का क्रूरता से हत्या की जा रही है। और ऐसा नहीं कि वो ठीक है वो खत्म हो गया, नहीं, उसके खून के धब्बे जो है ना, एक एक बालक के 6 धब्बे उस घर के सामने, घर में ऐसे लगे हुए हैं दीवार पे, हर समय आपको याद दिलाते हैं ये कीर्तिमान का धब्बा, ये उसका धब्बा, ये उसका धब्बा है। फिर भी वो जन्म देते रहे हैं। खुद के कल्याण के लिए नहीं दिया उन्होंने, 6 लोगों को जन्म दिया, क्योंकि कॉमनली हमको सोचना चाहिए कि अरे बालकों को मारने वाला है तो बालकों को जन्म ही मत दो, ना जन्म होगा ना वध होगा ना दुख होगा। ये फिर भी जन्म देते रहे, परोपकार के लिए किया उन्होंने, क्योंकि 8वें बालक के रूप में कृष्ण आएंगे और पृथ्वी को राक्षसों के भार से नष्ट कर देंगे, इसलिए हमें ये सेवा करनी है चाहे कितनी भी कष्ट वाली क्यों ना हो। तो देवकी से हम क्या सीख सकते हैं, निरपेक्ष सेवा। सेवा कई प्रकार की होती है, अच्छा लगेगा तो करते हैं, कोई वाह वाह हो गई सेवा की, शबाश की मिलेगी तो भी सेवा करते हैं, फिर कुछ लोग बिना वाह वाह के सेवा करते हैं, नहीं सेवा करनी है मुझे, लेकिन अनुकूल होगा, योग्य समय होगा, आनंद वाला होगा मुझे कम से कम तो मैं करता हूँ। फिर आगे वाली स्थिति होती है कि खुद को कष्ट हो रहा है वो सेवा करने में, लाभ कुछ नहीं है, शबाश की भी नहीं मिल रही है, फिर भी वो कर रहा है। लेकिन ये देवकी की सेवा जो है वो चरम कष्ट वाली थी। एक माँ को ही पता चल सकता है कि उसका अगर बालक अगर मरता है ना किसी कारण से, तो जिंदगी भर नहीं भूलती है वो, आगे 10 बच्चे भी हो जाएंगे तो उसको नहीं भूलती है जो गुजर गया था। मेरे घर में मेरी माँ को ये अनुभव होता था हमेशा, और ये कष्ट देवकी ने केवल सहन किया हमारे लिए कि कृष्ण आए। और देखो त्याग प्रवृत्ति कितनी है, तुम जब बालक भगवान बालक बनकर आए हैं तो भगवान के साथ में स्तनपान कराना, उनको खिलाना, उनको चलाना, कितना आनंद है उसके अंदर। एक सामान्य बालक के होते हुए इतना आनंद होता है, भगवान अगर आए तो कितना आनंद हो सकता है। लेकिन भगवान की इच्छा थी कि मुझे लेके जाओ गोकुल में, एक क्षण को भी उनको भी त्याग कर दिया उन्होंने, कोई सुखी नहीं है। देखो निरपेक्ष सेवा इसको कहते हैं। तो वसुदेव जी जब निकल गए बालक को लेकर तो घनघोर वर्षा हो रही थी। समझो आपको बताया कि ये सामान जो है ना वो मीरा रोड पहुंचा दो, आप गाड़ी लेके निकलते हो देखते हो कि तूफान आ रहा है, सब जगह पानी फैल रहा है, न्यूज़ आ रही है कि आगे बहुत ट्रैफिक जाम है, आप लोग क्या करेंगे, कल जाएंगे, आज क्या जरूरत है इतना भीड़ में। लेकिन भगवान ने कहा आज ही छोड़ना है, तो वो देख रहे हैं कि जमुना जी में तूफान आ रहा है फिर भी अंदर जा प्रवेश कर रहे हो, तो पहले इतना पानी घुटनों तक, फिर कमर तक, फिर इधर तक, फिर उधर तक। ये कहते हैं आज्ञा पालन। आज्ञा पालन कैसे होता है, कंडीशन नहीं होता है वो, इट्स नॉट, स्थिति अनुकूल होगी ऐसा होगा वैसा होगा तो आज्ञा पालन करेंगे, नहीं तो फिर कल करेंगे। नहीं, वसुदेव जी का जो आज्ञा पालन का प्रवृत्ति है बहुत भयंकर तीव्र प्रवृत्ति है। वसुदेव ने कृष्ण को अपने गोद में लिया और वो जा रहे हैं, साहस करके जल में प्रवेश कर रहे हैं, तो अनंत शेष उनके ऊपर आ गए। तो आचार्य बताते हैं कि जिस समय हम कृष्ण को अपना लेते हैं तुरंत अनंत शेष आपकी रक्षा करना आरंभ कर देते हैं। डोंट वरी, आगे का मार्ग में आपकी सुरक्षा स्वयं अनंत शेष करेंगे। वसुदेव को पता नहीं है कि उनके पीछे अनंत शेष हैं, उनको छत्र छाया दे रहे हैं, वो तो सेवा में मग्न हैं, कैसे पार कराऊं और कैसे उनकी इच्छा पूरी करूं और वहां छोड़ के आऊं उनको। तो यमुना जी बहुत व्याकुल है, यमुना जी भगवान की पत्नी है ना, बहुत पहले से वृंदावन में आकर खड़ी है, भगवान ने उनको बोला है कि आपको जाना है हमारी लीला में सहायता करने के लिए। आज वो आतुर है, बाहर की दृष्टि से देखा जाए तो तूफान आ रहा है, लेकिन अंदर की बात यह है कि यमुना जी बड़ी आतुर है कृष्ण के चरण छूने के लिए, मेरे स्वामी आएंगे आज, आ गए। तो वो कूद गए भगवान जल में। देखो यमुना जी पर कितना कृपा किया भगवान ने, कितनी प्रिय है भगवान, बाहर निकलते ही पहली कृपा जमुना जी पर, जमुना जी का जल पूरा चरणामृत कर दिया उन्होंने एक ही झटके में, आकाश में वारी बिंदु गिर रहे हैं, सब लोग प्रसन्न हैं आज। और जो रास्ता मिला ना जमुना जी ने, वो भी एक दिव्य चीज है। हर चीज में दिव्यता ढूंढना जरूरी है, और ये दिव्यता है कि आम तौर पे ऐसा नहीं होता है, कभी कोई डिवाइन इंटरवेंशन होगा, दिव्य अगर कोई किसी का हाथ होगा उसके अंदर, तो ही ऐसे हो सकता है। तो जमुना जी ने रास्ता दिया, पूरे सूखे रास्ते में चले गए वो। और दिव्यता देखिए, रात के समय कमल नहीं खिलता है, कमल खिल गया। क्यों? क्योंकि चंद्रमा सोच रहा है कि मैं आधा क्यों रहूं, मेरे वंश में भगवान जन्म ले रहे हैं, वाई शुड आई बी हाफ। तो पूर्ण चंद्र हो गए। ऐसा इतिहास में कभी भी नहीं हुआ है, किसी भी समय पर नहीं हुआ है, एक ही समय पे हुआ है। अष्टमी के दिन भगवान पूर्ण चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा हो गए, और वो देखकर कमलों को लगा कि अरे सूर्य प्रकाशित हो गया, इसलिए वो वो भी खिल गए। रात को कमल नहीं खिलते कभी। भगवान ने लक्ष्मी को आदेश दिया, तो फिर लक्ष्मी जी जा रही है तो सब कमल खिल गए, कि हमारी कमलिनी माता जो है वो हाथ में कमल लेके जा रही है, तो उनके सम्मान में हमको खेलना चाहिए। रात बीच में कमल खिल गए, ऐसे कई चमत्कार हो गए। ये सब दिव्य बातें हैं, इनको समझना जरूरी है। अभी देखिए वहां पर भी नंद महाराज के यहां पर गर्भ में कृष्ण विराजमान है। दिव्य बातें कैसे, देखो यहां पर जब जन्म हुआ कृष्ण का तो सारे पहरेदार सो गए, ये दिव्य बात है। तो आंखों में तेल डालकर एग्जामिन कर रहे हैं वो, क्या हो रहा है, कौन सा खट भी हुआ तो भी इंफॉर्मेशन जाती थी वहां पर। उस रात को सब योग माया के प्रभाव से सो गए। ये बाहर निकले, श्रृंखला टूटी, दरवाजे खुले, ताले खुले, सब अपने आप ही खुल गए, इतने दिन से तो जकड़े हुए हैं। ये भगवान के अवतार की दिव्यता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और आगे जाकर वहां पर भी सब सोए हुए हैं, नंदगांव में किसी के भय से नहीं सोए, वो तो योग निद्रा के प्रभाव में सोए। ये रहस्य की बात है, उनको नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि अगर गोकुल में, नंद भवन में ब्रजवासियों के लिए अगर सब ये दिव्य बातें समझ में आ गई, तो वो भगवान को भगवान 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 करके पूजन करेंगे। और भगवान ने अपनी जगन मोहिनी माया से सारे ब्रजवासियों के दिमाग से ये साक्षात्कार डिलीट कर दिया है कि वो भगवान है। आपको समझ में आया? हम भक्ति करते हैं, पहले समझते हैं कि भगवान ये कृष्ण भगवान है, ये पहले नॉलेज हमको प्रोक्योर करना पड़ता है, और फिर वो ऐश्वर्य भाव से भगवान का चिंतन पूजन सेवन करते हैं हम, उसके बाद में उनका साक्षात्कार होता है। तो ऐसे साक्षात्कारी भक्त थे वो सब। लेकिन भगवान को ना कुछ समय ऐसा चाहिए था जिसमें भगवान के रूप में कोई उनको देख नहीं रहा है, क्योंकि क्या है, हर समय हर क्षण अनंत काल तक सब लोग उनको पूजन पूजन और पूजन ही करते रहते हैं, तो उनको ना अपना स्पेस नहीं मिलता है। स्पेस पता है क्या होता है, हर एक व्यक्ति को अपना एक स्पेस चाहिए कि भाई मैं बनकर रहूं, हर बार लोग जो सोच रहे हैं वो बनकर क्यों रहूं दुनिया मुझे ये समझती है, वो समझती है, ये समझती है, वो समझती है, और उसी के भाव में मुझे दिन भर अनंत काल तक रहना पड़ता है। मैं बनकर कब रहूंगा, तो मुझे बनकर रहना है जो वहां पर मुझे कोई जानता नहीं होगा कि मैं भगवान हूं। श्री वृंदावन बिहारी जी की जय। इसलिए भगवान ने ब्रज का विशेष ऐसा आयोजन किया, और जगन मुनि माया से सबके सब जितने भी साक्षात्कारी भक्त थे उनके हृदय से मन से मेंदू से सब वो नॉलेज डिलीट कर दिया पूरा। अभी उनको पता नहीं है, अब उनको पता चलेगा कि ऐसा रात में हुआ। रात में क्या हुआ पता है ना आपको, देवकी कृष्ण यशोदा के कृष्ण में विलीन हो गए, क्योंकि सब लोग सोए हुए थे, एक ही व्यक्ति जग रहा है। वो आप सोचे होंगे अरे एक व्यक्ति सूतिका गृह में क्यों प्रवेश कर रहा है, एक पुरुष है वो और सूतिका गृह में प्रवेश कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं वसुदेव जी, मर्यादा का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं, किसी और की पत्नी के प्राइवेट चेंबर में जहां पर डिलीवरी होती है वहां पर तो कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, हॉस्पिटल में भी किसी को प्रवेश नहीं मिलता है, लेकिन वो क्यों प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि उनको आदेश था भगवान का, डू इट फॉर माई सर्विस, वहां की बालिका को लेके आओ। तो उन्हें रखने को गए, देखा तो एक पुत्र और एक कन्या है, लेकिन रखने को कहा तो वो जो जिसको रखा वो जो वहां पर थे उसमें विलीन हो गए, वो यशोदा कृष्ण में देवकी कृष्ण विलीन हो गए, और फिर दो बचे, फिर कन्या को लेकर आए। ये सब रहस्य की बातें, और ये सब योग माया के द्वारा सभी ब्रजवासियों को सुलाकर क्यों किया, क्योंकि ये सब अगर वो देखते तो फिर दिन भर ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुषा ऐसे करके उनका कीर्तन वंदन शुरू करते हो, और उनको पसंद नहीं था। जब मुंह खोला भगवान ने ब्रह्मांड दिखाई दिया तो यशोदा माई हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, अरे ये तो भगवान है, मैं तो कितनी बार डांटा इसको, क्षमा मांगने लगी, गौरव करने लगी, तो भगवान को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने मुंह बंद कर दिया तुरंत। पहले इसको अनुभव करने के लिए मैं यहाँ पर नहीं आया, वैकुंठ में बहुत सारे लोग वहाँ पर रोज पूजन कर रहे हैं, ऋचाओं का उच्चारण कर रहे हैं, दिन रात वहाँ पर गौरव गान चलते रहता है वैकुंठों में, वो नहीं चाहिए तो इसलिए आए ना यहाँ पर। इस तरह से फिर वसुदेव और देवकी और नंद महाराज यशोदा इन सबके आनंद हुआ। इस बीच में मैं बताना भूल गया आपको, ये सब लौट कर जब आए ना नंद महाराज के पास, बालक को छोड़ के बालिका को लेकर लौट के आए, तो आप जानते हैं ना कि वो उसको भी मारना चाहता था कंस, सब खबर पहुंच गई। जब वो लड़की पहुंच गई तभी वो पहली बार रोई, वहां पर नहीं रोई, ना यहाँ कृष्ण रोए ना वहां कृष्ण रोए जन्म के बाद। ये भी सब दिव्य है क्योंकि भगवान की योजना है उसके पीछे। कृष्ण का जन्म यहाँ पर हुआ तो वो नहीं रोए, यशोदा को बालक हुआ वो नहीं रोया, ना कन्या रोई, वो जेल में पहुंचने के बाद में फिर रोई, वो फिर खबर पहुंच गई, सब उठ गए, कंस आया, बोला मैं चांस दिलाना चाहता, मैं उसको मारूंगा, तो खींच लिया। उसने बहुत सारे बहाने बताए, मत मारो आप, मैं आपकी ये बेटी को आपकी बहू बनाऊंगी, आपको पुत्र होगा तो उसको ब्याह दूंगी उसको, किस तरह से मनाने का कोशिश किया, लेकिन वो क्रूर कर्मा जो है वो कहाँ मान रहा है। उसे खींच लिया उसके हाथ से और पटकना चाहा तो वो फिसल गई और आकाश में गई, और बहुत बड़ा विशाल अष्टभुजाओं वाला रूप धारण किया उसने, और उसको देखकर कंस डर गया, कंस को धमकी दिया उसने, तो मूर्ख व्यक्ति है, बंद कर ये सब काम, अपनी बहन पर अत्याचार को बंद कर दे, तुम्हारे तुमको मारने वाला कहीं और पैदा हो गया है, तुम यहां पर क्यों अत्याचार कर रहे हो। उसके बाद में कंस अगर गोगल गाय बन गया, एकदम चरणों में गिर गया उसके। मैं कल भी ये सवाल किया था, आज भी कर रहा हूं, कि हम अगर देवकी की जगह पर होते और आपको आपके छह बालकों को मारने वाला क्रूर कर्मा आपका भाई अभी आपके चरणों में गिर रहा है, नम्र होकर रो रो के गिड़गिड़ा रहा है, तो हम क्या करेंगे, लात मार देंगे उसको सर पे उसके, अच्छा मौका है। नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमको समझनी चाहिए, क्यों वो ऐसा कर पाई और क्यों किया उसने, क्योंकि भगवान का कुछ ही समय पहले उसको दर्शन हुआ था, साक्षात संवाद भी हुआ था। भगवान का दर्शन का अर्थ क्या होता है, भगवान का दर्शन होने के बाद मन में कोई दुख किंतु परंतु रहता नहीं है, सब समाप्त हो जाता है। तो देवकी का मन पूरा स्वच्छ हो गया था, कोई उसके मन में मेमोरी नहीं थी, मतलब था उसको पता, लेकिन उसका जो परिणाम होता है ना, समझो आपको मैंने तमाचा मारा तो आपका अहंकार को दर्द हो गया ना, वो बहुत देर महीनों तक सालों तक दर्द रहता है, उस व्यक्ति को देखते याद आती है, अभी तो बड़ा अच्छा मित्र करके गले मिलता है लेकिन उस दिन मुझे उसने मारा था, इसकी याद रहती है, वो याद भी मिट जाती है, दर्द वाली याद, अगर भगवान का दर्शन हम करते हैं। इसलिए भगवान का दर्शन करना ये शक्तिशाली वस्तु है। इसलिए जब वृंदावन बिहारी के पास जाएंगे, मदन मोहन जी के पास जाएंगे, कहीं भी दर्शन करेंगे तो उनको पत्थर समझ के दर्शन मत करना, साक्षात दर्शन करना उनके, वो आपको ऐसे अनुभूति देंगे, भगवान हमारा सारा जो नकारात्मक भावना है ना, नेगेटिविटी, वो सब हर लेते हैं जब भी हम उनका दर्शन करते हैं। जब भी मंदिर में जाते हैं श्रृंगार दर्शन, कोई दर्शन करने के लिए, और बड़े भाव से उनके सामने खड़े रहते हैं कि आपके अंदर की नकारात्मक जो चीज़ें हैं वो भगवान सब छीन लेते हैं, बड़ी पवित्र बना देते हैं। हमको भगवान के धाम में जाने से क्या रोकता है, हमारी नेगेटिविटी, हम अपने बदले की भावना, क्रोध, काम, लोभ, मद, मत्सर, गर्व, अहंकार लेकर भगवान को नहीं मिल सकते, कितना भी भजन करें हम। ऐसे द्वेष की भावना होगी, बदले की भावना होगी, प्रतिशोध की भावना होगी, तो भगवान को नहीं मिल सकते हैं, वो सब हमको यही त्याग करना पड़ेगा। इसलिए अगर सॉरी किसी को बोलना है, अभी बोलना शुरू कर दो, वो हमारे मेडिकल साइंस में लिखा है, जब कोई व्यक्ति मरता है ना तो एक लास्ट में होता है 6 लविंग एक्सचेंजेस, उसमें माफ करना होता है सबको, आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू, सबको सबको माफ करना होता है। लेकिन अगर बहुत सारा फॉरगिव का लोड होगा और समय कम होगा तो फॉरगिव भी नहीं कर पाएंगे आप, तो वाई टू कीप द लोड टू लास्ट मोमेंट, फिनिश ऑफ फ्रॉम नाउ ओनली. उस समय कोई माफी और क्षमा करने का काम ही नहीं होना चाहिए, केवल प्रेम ही प्रकट करने का और ऋण प्रकट करने का, कृतज्ञता प्रकट करने का ही भाव होना चाहिए. इसलिए भक्ति जीवन में हम बार बार सीखते हैं, लव मीन्स एवर लास्टिंग फॉरगिवनेस, ऐसा हमारे परम पूज्य गुरुदेव राधानाथ स्वामी बताते हैं. अगर प्रेम अगर है मतलब क्षमा उसके अंदर छुपी हुई है. प्रेम के भावना में, प्रेम के कार्य में कोई बदले की भावना और मन में रखना ऐसा नहीं होता है, मन मुटाव नहीं होता है उसके अंदर. तो देवकी ने कितना बड़ा महान कार्य किया देखो आप, जिसको वो शाप दे सकती थी, दंड दे सकती थी, लात मार सकती थी, जीवन भर क्रोध से रह सकती थी कि तू मेरा भाई होके भी मेरे 6 बालकों को तुमने मारा. देखिए देवकी ने ऐसा नहीं किया. ये जो मन की महानता जो है ना, ये भक्त का लक्षण है. इतना बड़ा त्याग किया था हम सबके लिए उसने, इतना भजन, इतना त्याग, 6 बालकों का वध सहन किया और भगवान को भी त्याग दिया, मतलब भगवान की इच्छा के अनुसार. जैसे देवकी बहुत महान है, जितने भी मनुष्य जीव इस पृथ्वी पर हैं या इस ब्रह्मांड में हैं, सब देवकी के ऋणी हैं. उनको कृतज्ञ होना चाहिए देवकी के प्रति, क्योंकि देवकी ने ये सब कुछ किया इसलिए कृष्ण आए, नहीं तो नहीं आते थे. जब भक्त कोई त्याग करता है ना भगवान की सेवा में, तो दूसरों को भगवान के दर्शन का, भगवान के होने का लाभ होता है. एक और बात गुरुदेव बताते हैं कि कंस का व्यक्तित्व क्या था, क्रूरता थी, लेकिन जब भी आकाशवाणी हुई तब से भय निर्माण हो गया उसके मन के अंदर, है ना. तो गुरुदेव यहां पर बताते हैं कि माया के प्रति हम सब लोगों को हेल्दी डर होना चाहिए. यू हैव टू बी हेल्दीली फियरफुल ऑफ माया. वैसे भक्ति में कोई डर का काम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर भक्ति में कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी है तो माया से डरना सीखना चाहिए. यू हैव टू कल्टिवेट हेल्दी फियर फॉर माया. इसलिए क्या करना चाहिए, माया के विषय में पूरा ज्ञान भी होना चाहिए. हमारे देवामृत महाराज बताते हैं, देवामृत स्वामी महाराज, कि माया के क्या कहते हैं उसको, जो घटनाएं होती है ना, माया किस प्रकार से काम करती है, उसके बारे में भी चर्चा करते रहनी चाहिए. वो भी एक प्रकार का कीर्तन है, क्योंकि तो जितना माया का भयंकर स्वरूप हम जान लेंगे उतना कृष्ण की शरण लेंगे. इसलिए वास्तव रूप में माया के विषय में भी बीच में चर्चा करती रहनी चाहिए. यू हैव टू बी कीप डिस्कसिंग अबाउट माया. फिर हम अगर माया के विषय में पूर्ण जानकारी लें कि माया से हम पंगा नहीं ले सकते, तो हम कृष्ण की शरण उतनी ही प्रभावी रीति से कृष्ण की शरण लेंगे. जब कृष्ण की शरण लेंगे फिर वो व्यक्ति निर्भय हो जाएगा. तो प्रोसेस कैसा है, माया के विषय में पूर्ण पूर्ण भय, फिर पूर्ण भय के साथ कृष्ण की शरणागति और फिर निर्भयता. वो बीच में अगर कृष्ण की शरणागति नहीं ली तो भय से मुक्त नहीं हो सकते हम, चाहे भय के बारे में पता भी हो या ना भी हो, भय बना रहेगा और भय के साथ कृष्ण की प्राप्ति नहीं कर सकते हम. तो जब हम निर्भय हो जाएंगे तो कृष्ण के प्रेम का, अस्तित्व का अनुभव करेंगे. फिर आगे लिखा है कि जैसे गंगा जी तीनों लोगों को पवित्र करती है अपना प्रवाह से, ऊपर के लोगों को, हमारे लोग को और नीचे के लोगों को, तीनों जगह घूमती है, हाँ, स्वर्ग लोकों में, हमारे पृथ्वी लोक में और पाताल लोक में घूमती है, सभी लोकों में, और तीनों को पवित्र करती है. वैसे ही कृष्ण कथा, कृष्ण कथा का जो वर्णन है वो तीन लोगों को पवित्र करता है. जो कथा करता है उसको, जो कथा में जिज्ञासा करता है, प्रश्न पूछता है उसको, और जो बिना प्रश्न किए ध्यान से सुनते रहते हैं, वो तीनों प्रकार के लोग इसमें शुद्ध हो जाते हैं. बीच में सो जाते हैं उनका मुझे पता नहीं, उनका वर्णन यहाँ पर नहीं दिया है. तो मैं समझता हूँ कि कथा में किसी को सोना नहीं चाहिए, कथा में सब लोगों को अटेंटिव रहना चाहिए. कथा श्रवण का अर्थ ही है ध्यानपूर्वक एकाग्र भावना से सुनना. तो कृष्ण कथा पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ और उत्सुकता के साथ, विथ फुल फेथ, फुल अटेंशन एंड ईगरनेस. सुखदेव जी बता रहे हैं जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ, एकाग्रता के साथ श्री कृष्ण कथा को सुनता है, ये सर्वोच्च प्रकार की भक्ति है. तो आप बोलेंगे फिर ये डेकोरेशन कौन करेगा, फिर सब लोग दिन भर कथा में बैठेंगे तो तो समय समय पर अलग अलग सेवा करते हैं हम जो जरूरत है, लेकिन श्रवण साधना किए बिना आपको वो सारी सेवाएं करने का प्रेरणा ही नहीं मिलेगी, नॉट पॉसिबल। अगर आपके अंदर भगवान के प्रति भाव नहीं है तो उनके जन्म के प्रति भाव कैसे आएगा? तो भगवान के प्रति भाव है तो जन्म के प्रति आपको उत्साह आएगा कि अरे कल हमारे भगवान का जन्मदिन है। लेकिन ये सब आपको कैसे पता चलेगा? जब आप उनके बारे में सुनेंगे, बहुत लंबे समय तक आपने सुना है उनके विषय में, ध्यानपूर्वक उस पर चिंतन किया, उसको मनन किया है, जो सुना है उसको प्रोसेस किया मन में, फिर वो साक्षात्कार के रूप में आपको लग रहा है कि हाँ भगवान है। ऐसा नहीं कि ये सब लोग बेकार में समझ अपना समय गंवा रहे हैं। तो श्रवण करने की प्रक्रिया जो है वो भगवान सुखदेव जी महाराज भागवत में स्वयं बता रहे हैं कि ये भक्ति का सर्वोच्च मार्ग है। यहां तक कि भक्ति की शुरुआत ही श्रवण से होती है। तो आज शायद हमें कृष्ण की प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं हो रही है, विग्रह के रूप में बड़ी दया से हमारे सामने खड़े, फिर भी वो भाव निर्माण नहीं हो रहा है। तो वो भाव श्रवण से निर्माण होगा जब हम सुनेंगे भगवान के विषय में। राधानाथ महाराज बार बार कथा में बताते हैं कि अगर प्रेम प्रेम निर्माण करना है, प्रेम निर्माण करना है, तो केवल जप करने से प्रेम निर्माण नहीं हो रहा है, क्योंकि जप करने में भी नींद आती है, आलस्य आता है, उत्साह नहीं होता है, बहुत प्रयास करना पड़ता है, कभी लगेगा मन, कभी नहीं लगेगा, नींद पूरी हुई नहीं हुई, खाना रात को क्या खाया था, किससे बात की थी, कितने प्रकार की चीज़ें हैं जो सुबह जप के समय पर असर करती है। तो कभी कभी इतना साल प्रयास करने पर भी जप में रुचि नहीं आ रही, इसलिए फ्रस्ट्रेशन आता है। तो आसान तरीका क्या है? वो जप को करते रहो लेकिन भगवान के विषय में कथा सुनते रहो। वो कहते हैं कि अगर आप सुन रहे हो कि कैसे भगवान एक साल के उम्र के कैसे माखन चोरी कर रहे हैं, और कैसे वो खंभे में जो अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं उससे बात कर रहे हैं, और वो जो बात कर रहे हैं वो खंभे का प्रतिबिंब भी बात कर रहा है, वो कह रहे तुम चोरी मत करो, वो भी कह रहे तुम चोरी मत करो, क्योंकि तो वही अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं, हाथ में मक्खन का गोला है, तुम मेरे घर में कैसे आए, तो वो भी पूछ रहा तुम मेरे घर में कैसे आए। ये सब द बेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज ये सब प्रसुदमाई देख रही है। अब ये आप सुनेंगे तो केवल आपके मन में प्रेम ही आएगा उस व्यक्ति के प्रति, देयर इज नथिंग एल्स कैन कम। कोई ज्ञान वान सिद्धि विद्धि की बातें नहीं आएगी आपके अंदर। हाँ, और भगवान मुंह खोल के बोल रहे हैं कि नहीं मैंने माखन खाया, मैंने मट्टी नहीं खाई, बोले मुंह खोल के दिखाओ, वो मुंह खोल के देख रही है। हाँ, गोद में स्तनपान कर रहे हैं, तुतले तुतले बोल बोल रहे हैं, चलने को सीख रहे हैं, डर के मारे भाग के यशोदा के गोद में आ रहे हैं, वो सब सुनकर क्या आएगा आपके मन में? प्रेम ही आएगा। तो अगर आपको फास्ट ट्रैक लव चाहिए भगवान के लिए, कथा सुनो भगवान की, कथा पढ़ो, कथा सुनो, कथा पे चिंतन करो, कथा की चर्चा करो, कथा इंतस्तु माम तुभ्यम क्या कहते हैं उसको, दुष्यंति च रमंति च। भगवान अपने भक्त की व्याख्या करते हैं, मेरे भक्त कौन है जो हमेशा बैठकर मेरे बारे में चर्चा करते हैं, एक दूसरे के साथ में मेरे विषय में चर्चा करते हैं, एक दूसरे को बोध देते हैं, प्रेरणा देते हैं, मेरे ही विचार में मग्न रहते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः, दृढ़ व्रत से सतत मेरा कीर्तन करते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटा हाथ में माला लेकर घूम रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है, चिंतन कर रहे हैं, सेवा करते समय, काम करते समय मेरे लिए ही काम करते हैं, मेरे प्रसन्नता के लिए जीते हैं, सारा समय मेरे विचार में रहते हैं, मुझे ही प्रसन्न करने का प्लान करते हैं, सब समय उसमें बिताते हैं, ये मेरे भक्त हैं। सततम कीर्तयन्तो माम, ये बहुत जरूरी है समझना। और भगवान ने ये लीलाएं प्रकट क्यों की है? तो उनको पता है कि सबसे आसान तरीका हम सब लोगों को उनकी ओर आकर्षित होने के लिए उनकी लीला है। द इजिएस्ट वे टू गेट अट्रैक्टेड टू द लॉर्ड इज टू हियर हिज पास्ट टाइम्स। इतनी उनकी लीलाएं प्रभावी है कि रुक्मिणी देवी, सत्यभामा देवी और सारी देवियां जो उनकी पत्नियां बनी, वो उन्होंने केवल बाल्यकाल से केवल कृष्ण की कथा सुनी थी। यहाँ तक कि जरासंध के जेल में कैद थे ना 16,100 कन्याएं, उन्होंने भी बचपन काल से कृष्ण की लीलाओं का श्रवण किया था, दर्शन नहीं किया था कभी। रुक्मिणी ने भी बाल्यकाल से केवल कथाएं सुनी थी और इतना प्रेम हुआ था कि वो अपनी जान की बाजी लगाने को भी तैयार थी उससे विवाह करने के लिए। सत्यभामा का तो ऐसा था कि सत्यभामा रोती थी, क्या बताएं आपको, उनकी माँ उनको काजल लगाकर श्रृंगार किया करती थी, वो कृष्ण की याद में रोती थी, तो रोज जो अश्रुओं के माध्यम से काजल गिरता था ना उसका एक छोटा सा पर्वत बन गया था उधर, जहाँ बैठकर वो रोती थी। ये सुनकर पढ़कर मैं तो हैरान हो गया, किस प्रकार का प्रेम है ये, ना अभी तो दर्शन भी नहीं हुआ है प्रियतम का, उसके बारे में सुनकर इतना प्रेम हो रहा है कि जो पानी के साथ में काजल बह रहा है वो गिर गिर के वहाँ पर छोटा सा पर्वत बन गया है, पानी उड़ गया, काजल रुक गया उधर। ये सत्यभामा के प्रेम का वर्णन गोपाल चंपू में दिया है। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान को देखने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो दर्शन आपको तब देंगे जब उनकी मर्जी होगी। आप उनको डिमांड नहीं कर सकते, भगवान इतने साल से भजन कर रहा हूं, अरे कब दर्शन दोगे, ये भी कोई तरीका है आपका, इतना समय बिताया हमने, जवानी भी गई बुढ़ापा भी गया, कब दर्शन दोगे। नहीं ऐसा होता है, जब उनकी मर्जी होती है तो प्रेम से दर्शन देते हैं। तब तक क्या करना है, कथा सुनते रहो, क्योंकि कथा के माध्यम से वो आपके हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए जन्माष्टमी हो या जन्माष्टमी नहीं हो, या और कोई सादा दिन हो या और कई दुख वाला दिन हो, कृष्ण कथा को सुनने का नियम कभी छोड़ना नहीं। आप नित्य नियम से रोज कृष्ण कथा सुनो, गौर कथा सुनो, राम कथा सुनो, नरसिंह कथा सुनो, भगवान के अवतारों की कथा सुनो। लेकिन सबसे सर्वोच्चम लीला जो है वो भगवान की प्रेम लीला है गौर ब्रज धाम की, और उसमें भी बहुत प्रेममय लीला जो है उनकी बाल्य लीला है। भगवान जब रेंग रहे हैं गौशाला में, गोबर गौमूत्र के सुंदर चिकने मिश्रण में स्केटिंग कर रहे हैं पेट के बल, बछड़े का पूंछ पकड़कर दोनों कृष्ण बलराम स्केटिंग कर रहे हैं पूरा गौशाला में, तो देखकर रोहिणी के आंखों में से आंसू आ रहे हैं, यशोदा दीदी आ जाओ देखो देखो, वो भाग के आते, उनके आंखों में आंसू आते प्रेम के, और दोनों आंखों में प्रेम के आंसू भरकर देख रहे हैं अपने दोनों बालक कैसे बछड़ों का पूंछ पकड़कर पूरे गौशाला में घूम रहे हैं। ये सुनकर केवल प्रेम ही आता है। आपको वहां होने का भाग्य होगा, अच्छी बात है, नहीं होगा, सुनने को मिल रहा है लीला, यही हमारा परम भाग्य है। इसलिए भगवान ने अपनी दिव्य लीलाओं को यहां प्रकट किया, ताकि अनंत काल तक लोग भौतिक दुनिया में जन्म लेते रहे, उनकी लीलाओं को श्रवण करते रहे और अपने जीवन को धन्य करते रहे। फिर जगन्नाथ के रूप में आए, बोले चलो कुछ भी होता नहीं, जगन्नाथपुरी एक बार आके मुझे देख के जाओ, मुझे देख के ही प्रेम से आपका प्रेम हृदय में प्रेम का उदय होगा, मेरा प्रसाद पाओ और मेरे प्रेम को प्राप्त करो। कितना भगवान ने हमारे लिए आसान कर दिया है सब चीजें। तो पुरुष बोधिनी उपनिषद में प्रभुपाद जी लिखते हैं, एको देवो नित्य लीलानुरक्तो, ये भगवान जो है वो हमेशा लीला में अनुरक्त रहते हैं, एक ही देव है, सदैव लीला में अनुरक्त रहते हैं। बाकी सारे जो भगवान के अवतार होते हैं ना, वो आते और जाते हैं, जैसे नरसिंह भगवान आए, खंभा तोड़ दिया, प्रहलाद को प्रेम दिया, हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया, चले गए। कृष्ण भगवान जो है ना निरंतर लीला में मग्न रहते हैं, निरंतर राक्षसों को मारने का काम भी उनके अंदर जो विष्णु का स्वरूप है, जो ऐश्वर्य कृष्ण है, वो ही करते रहते हैं। वो स्वयं कभी भी राक्षसों को मारना, व्यवस्थापन, मैनेजमेंट कुछ नहीं करते, सारा उनके असिस्टेंट, उनकी कला, उनके अंश, एतेच अंश कला पुंस, ये सब उनके अंश करते रहते हैं। वो केवल प्रेम को आदान प्रदान करने के लिए है, उनसे जाकर आप फिर वो ऐश्वर्य की मांग मत करो, उनसे खाली प्रेम की मांग करो, क्योंकि तो वो उनकी सबसे बड़ी भेंट है। वो मोक्ष लघुता कुरुता, मतलब क्या, वो सबसे बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं वो भी लघुता कर देते हैं, उसमें से एक है मोक्ष, वो भी लघुता हो जाता है। भगवान के प्रेम के सामने मोक्ष भी नहीं चाहिए ऐसा लगता है, जन्म जन्मांतर जन्म लेता रहूं आपके चरणों में, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहे तो की त्वयि, हाँ ऐसे भगवान के भक्त बताते हैं। तो ये सब मोक्ष लघुता, धन की लघुता, ऐश्वर्य लघुता, मान सम्मान लघुता कैसे पैदा होगी, जब कृष्ण की लीलाओं का हम स्मरण करेंगे। सबसे उच्च तरीका जो है माया से बचने का, वो है भगवत लीला स्मरण, रिमेंबरिंग द स्वीट पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड कॉन्स्टेंटली इज द ओनली वे टू कीप अवे फ्रॉम माया। कोई भी अगर जीवन में दुख हो आपके, कोई ऐसा है क्या जिसमें जीवन में दुख नहीं है, एक दुख नहीं है, दुखों का एक पूरा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स बिग कॉम्प्लेक्स ऑफ मिजरीज सबको हमेशा परेशान करती रहती है, वी आर ऑल हॉन्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ मिजरीज कॉन्स्टेंटली। उसके बाद में ये होते हुए भी कौर अब बड़ा कौन सा और हादसा हो जाएगा, नोबडी नोज, तब सब लोगों को एक समस्या रहती है कि दुखों से बचे कैसे, दुखों से दूर कैसे रहे, हाउ वी कैन प्रिवेंट द मिजरीज. तो मिजरी कॉजिंग इवेंट जो है वो हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, बट उससे होने वाले मिजरी जो है वो जरूर प्रिवेंट कर सकते हैं. हाँ, पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल. तो सफरिंग ऑप्शनल कैसे करें, वो है भगवान की लीलाओं का स्मरण करके. मैं आपको बता रहा हूं यकीन से, विश्वास के साथ मैं बता रहा हूं कि भगवान की लीलाओं का स्मरण दुखों का कंप्लीट विनाश कर देता है. दुख वहां पर है, जो घटना दुख वाली है वो वही है और वही रही हुई है, ऐसा जान ही रही है, वो सत्य वास्तव है. लेकिन उसका जो परिणाम आप पर हो सकता है वो भगवान की लीलाओं का स्मरण तुरंत उसको नष्ट कर देता है. और यहीं पर भगवान की लीलाओं का परिणाम रुकता नहीं है. भगवान की लीलाओं का परिणाम दुखों का निवारण करने के बाद में आपको प्रेम का अनुभव देता है. सी, साइमल्टेनियसली बोथ थिंग्स आर हैपनिंग, मिटिगेशन ऑफ मेजरेबल एक्सपीरियंसेस एंड रिलिशिंग द लव ऑफ द लॉर्ड. जो आत्मा को आवश्यकता है ना, सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, जिस आनंद को प्राप्त करने के लिए हम बड़े व्याकुल रहते हैं, वो आनंद इस कृष्ण नाम से और कृष्ण कथा से प्राप्त होता है. तो हमको केवल दुखों का निवारण हमारा जीवन का गोल नहीं है. दुखों का निवारण करने से केवल हम न्यूट्रल लेवल पे आएंगे, जीरो लेवल पे आएंगे. व्हाट नेक्स्ट, व्हाट टू डू, व्हाट टू एक्सपीरियंस पॉजिटिव. तो नेगेटिव नष्ट, पॉजिटिव प्राप्ति, प्रेम की प्राप्ति. प्रेम कुमार तो महान, पंचम पुरुषार्थ, ये कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करके प्राप्त होता है. और ये कृष्ण की लीलाएं, उनका जन्म की दिव्यता, उनकी लीलाओं की दिव्यता हमको समझ में आई ना, तो कोई तप करने की आवश्यकता नहीं है, कोई ज्ञान कांड करने की आवश्यकता नहीं, कोई मोक्ष के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है. व्हाट इज आवर प्रॉब्लम, हमको पता नहीं है क्या चाहिए हमको, लेकिन हमको चाहिए वो है भगवान का प्रेम. वो हमारी वास्तविक आवश्यकता है. उसको विकृत रूप में हम देख रहे हैं कि हमको ये चाहिए, वो चाहिए, ये मिलेगा तो अच्छा मिलेगा, ये होगा तो अच्छा रहेगा, ये मिलेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, संतुष्ट हो जाऊंगा, परिपूर्ण हो जाऊंगा. लेकिन बिना प्रेम के प्राप्त किए हमें परिपूर्णता नहीं मिलती है. इसलिए भगवान आते हैं और आकर लीला करते हैं. जैसे हम बार बार हाँ विनोद में कहते हैं, अरे वो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए इतना सारा दोपहर से लेकर शाम तक क्या जरूरत थी, है ना. दोपहर में आए वो भगवान नरसिंहदेव, शाम को नहीं आए, दोपहर के समय खंभा तोड़ के आए, शाम को मारा उनको, बीच में 6 घंटे फुल टाइम पास. वो कैसे बिल्ली वो छोटे चूहे को कैसे करती है, थोड़ा चबाती है, छोड़ देती है, फिर उसके पीछे बिल्ली भागती है, फिर वो वापस वो एक और एक बार चबाती है उसको, खेलती है उसके साथ, और ये एंड में उसको मार देती. वैसे भगवान ने हिरण्यकश्यप के साथ में पूरा ऐसा खिलवाड़ किया, कभी वो हारने का मूड पैदा किया, कभी जीतने का मूड पैदा किया, कभी ऊपर कभी नीचे. और फिर उसके बाद में अरे वो दरवाजे के दहलीज पे वो टाइम देख रहे बार बार, सूर्यास्त का भगवान भी देख रहे हैं टाइम, सूर्यास्त का वचन दिया मैंने उसको, मतलब संधिकाल में, संधिकाल के लिए वेट कर रहे हैं. फिर घर में नहीं, बाहर में तो दहलीज पे गए हैं, फिर थल में नहीं, जल में नहीं, हवा में, बीच में उनको पकड़ के इतना सारा माहौल क्यों उत्पन्न किया, अरे ताकि हम लोग आप लोग बैठ के सुने उसके डिस्कस करें उसके बारे में. कैसा भगवान ने किया, देखो ब्रह्मा ने इतना वरदान दिया था, इतने सारे कंडीशन, शस्त्र नहीं, अस्त्र नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कैसे भगवान ने, देखो ये सारा नियम पालन करके फिर भी वो सबका ब्रह्मा का रिस्पेक्ट रखे, उन्होंने फिर भी हिरण्यकश्यप का वध किया. वाह क्या बढ़िया भगवान है हमारे. हमारी मेडिकल भाषा में क्या बोलते हैं, अरे इतना वो अंगुली का रूप लेकर वो उत्तरा के गर्भ में गए थे ना, पूरा 4 भुजा के साथ गदा चक्र लेकर गए थे पूरा, वैसे ही छोटा सा रूप लेकर जाते हिरण्यकश्यप के हृदय में, उसकी मेन आर्टरी काट देते चक्र से, खत्म. एक्सीडेंटल डेथ विद नो रीजन, नो हिस्ट्री, नो हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, नो हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, फिर भी डेड. फिर हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास कोई सातवा स्कंद नहीं होता, फिर सुखदेव जी क्या बोलते, परिचित क्या सुनते. तो भगवान ये सब क्यों कर रहे हैं, सब इतना सब लीला क्यों कर रहे हैं. उनको वो पेट के बल पर वो गोबर गोमूत्र का मिश्रण में उल्टा सेटिंग करने की जरूरत क्या है, वो हमें और आपको रिझाने के लिए कर रहे हैं, यहां पर कर रहे हैं. उनको वहां पर लीला चलती रहती है, नित्य यौवन लीला, नित्य नवायमान लीला वहां पर चलती रहती है, वहां पर उनको यहां पर आने की जरूरत नहीं है. लेकिन यहां पर हमारे लिए आकर लीला कर रहे हैं वो. यू हैव टू अप्रिशिएट, रीड, मेडिटेट ऑन द लीला ऑफ द लॉर्ड. आपके मन को कोई भी कष्ट नहीं छुएगा अगर आप भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हैं। हमारी क्या समस्या है, हम लोग जब दुख होते हैं ना तो दुखों का निवारण करने में लगे रहते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, उधर बैंक में कितना बैलेंस है, वो सब कुछ हमारा जो भौतिक तरीका है ना दुखों का निवारण करने का उसमें लगे रहते हैं। वो करना चाहिए, बुरा नहीं उसमें, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि इसके साथ साथ जो एनएचए औषधि है, सर्वोच्च औषधि वो उनकी लीला है, उसका सहारा लेना चाहिए। दुख के समय तुरंत भगवान नाम और भगवत लीला के आश्रय में जाना चाहिए, तुरंत भगवान का नाम स्मरण होना चाहिए जब कष्ट होता है, और बाकी सारे प्रयास आप करते रहो, वो आपका कर्तव्य है। लेकिन इसको हम भूल जाते हैं, बाकी सारे प्रयास करते रहते हैं। अरे आप बोलेंगे जपा हुआ क्या, अरे आज जप क्या बात कर रहे हो, मेरे घर में इतनी बड़ी समस्या हो गई, किसी का मृत्यु हो गया। नहीं, उस दिन भी हमको जप करना चाहिए, भगवान के नाम का सहारा लेना चाहिए, कितना भी संकट कितना भी आंधी तूफान आए हमारे जीवन में, ये याद रखना चाहिए कि हमारा रियल सॉल्यूशन हरि नाम हरि लीला है। धाम में तो जाना पड़ता है, वो बहुत दूर है हमारे पास से, मंदिर में भी जाना पड़ता है दर्शन करने के लिए, लेकिन नाम और लीला आपके साथ है, कभी भी आप उसको, कोरोना के काल में भी दो ही चीजें प्रभावित थी, हरि नाम हरि लीला, बाकी सब बंद था, मंदिर बंद था, धाम भी बंद था, सब बंद। तो अगर हमने पहले प्रैक्टिस किया है हरि नाम का हरि लीला को चिंतन करने का, तो ही कोरोना के समय वो काम आता है, तो ही संकट के समय काम आता है। इसलिए जब कुछ सब कुछ ओके है, कोई ज्यादा संकट नहीं है, ज्यादा पीड़ा नहीं है, तब हरि नाम और हरि लीला के प्रति आकर्षण निर्माण करो, तो ही भगवान का जन्माष्टमी महोत्सव सफल है। तो भगवान ने 50 लीला किए तो भी वो हमारे लिए सफल नहीं है, सफल तो है ही, वो सदा यशस्वी है, लेकिन हमारे लिए यशस्वी नहीं है वो, क्योंकि हमने उसका आसरा नहीं लिया है। सभी भक्तों को, सभी प्रामाणिक, आप भक्त हैं, हाँ आज के दिन में आप कहीं भी रह सकते हो, फिर भी आप यहाँ पर आए हो जन्माष्टमी को मनाने के लिए, सेवा में आए हो, तो ये सबका उद्देश्य एक ही है कि हमारे मन में निरंतर भगवत स्मरण, भगवत लीला स्मरण चलता रहे। तो वो अगर होता है तो भगवान जिस उद्देश्य के लिए आए वो उद्देश्य सफल है, और वो हम अपने लिए वो सफल या असफल करते रहते हैं। प्लीज डिसाइड, आप निर्णय लीजिए कि ये जीवन उनके स्मरण के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनके चिंतन के लिए, बाकी तो फिर क्या कहें। 84 लक्ष योनियों में से एक लक्ष योनि छोड़ दो, बाकी सारी योनि आपके लिए उपलब्ध हैं, जब चाहे जन्म लो और भोग लेते रहो। ये एक जन्म दिया है केवल, वो भगवान की प्राप्ति के लिए है, इसलिए बाकी कर्तव्य करते रहना है, हमको छोड़ना नहीं है, भागना नहीं है, लेकिन इसको ध्यान रखना है। चाहे हम किसी भी अवस्था में हो, जीवन के किसी भी अवस्था में हो, किसी भी स्थिति में हो, दुख की सुख की, धन की और धन के अभाव की, लेकिन ये जो है भगवान नाम और भगवत लीला का स्मरण, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल।